તારીખ 8/9/1992 ત્યાગ ધર્મ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 28A
ધર્મ હૈ વો આત્મા કો અનુસરણ કરકે પ્રાપ્ત હોતા હૈ જિસકા અનુસરણ હોતા હૈ આત્મા ખુદ પરદ્રવ્ય સે ભિન્ન હોને કે કારણ સ્વયં અપોહક સ્વરૂપ હૈ યે શબ્દ આચાર્ય મહારાજ ને સમનિસાર કી ટીકા મેં બતાયા હૈ જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મા પર દ્રવ્ય કા અપોહક હૈ અપોહક મેને ક્યા કે પર દ્રવ્ય સે સર્વથા ભિન્ન હોને સે ઉનકો પર દ્રવ્ય કા ગ્રહણ કરને કા અધિકાર નહીં ઓર ત્યાગ તો ગ્રહણ પૂર્વક હોતા હૈ જો આત્મા મે કિસી પર દ્રવ્ય કા ગ્રહણ હોતા નહીં તો બિના ગ્રહણ કે હુએ ત્યાગ કિસ ચીજ કા કરના યે આત્મા કે મૂળ સ્વરૂપ કો બતાતે હુએ સમયસાર સ્વરૂપ આત્મા કા મૂળ સ્વરૂપ કો બતાતે હુએ આત્મા કો અપોહક મેં ત્યાગ સ્વરૂપ હી કહા હૈ ગ્રહણ પૂર્વક ત્યાગ ને ત્યાગ સ્વરૂપ હી કહા હૈ તો એસે આત્મા કો શ્રદ્ધા જ્ઞાન મેં લેકર કે જો ભી જીવ કી પરદ્રવ્ય કો ગ્રહણ કરને કી વૃત્તિ હૈ એસે પરદ્રવ્ય કો ગ્રહણ કરને કે પરિણામો કા ત્યાગ હો જાય યા ઇસ પ્રકાર કે પરિણામ શાંત હો જાય ઉસી કો ઉત્તમ ત્યાગ કહેતે હૈ ઉસકે પહેલે શ્રીમદ જી ને ત્યાગ કી પરિભાષા બહુત સુંદર બતાઈ હૈ કે પરદ્રવ્ય કા મેં ગ્રહણ કરતા હું પરદ્રવ્ય કો મેને ગ્રહણ કિયા ऐसा एक अध्यास होता है क्या पर द्रव्य से अभिन्नपणा का है तो आत्मा पर द्रव्य से भिन्न किंतु पर द्रव्य से अभिन्नपणा का भाव को अध्यास कहते हैं अध्यास मैंने भ्रम इस अध्यास के त्याग को होना ही जिनेन्द्र भगवान ने त्याग कहा है क्या मतलब है इसमें कि सबसे प्रथम अगर हमें त्याग करना है तो किसका त्याग करना अगर सबसे प्रथम त्याग करना है तो किसका त्याग करना कि अध्यास का त्याग कर देना अध्यास को छोड़ देना सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में त्याग अध्यास का होना चाहिए जब अध्यास छूट जाएगा तब पर द्रव्य के ग्रहण करने वाले जो रागादि परिणाम है जो राग होता है कि जिसमें मैं पर द्रव्य को ग्रहण करूं ऐसा जो राग होता है ये राग का जोर टूट जाएगा और जोर टूटने से वो कमजोर हो जाएंगे निराधार हो जाएंगे और आगे जाकर के वो शांत हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे इस त्याग का वर्णन करता करते हुए आचार्य महाराज पद्मनंदी 101 नंबर का श्लोक कहते हैं पद्मनंदी पंचविष्टिका में है व्याख्याया कृते श्रुतस्य यतये जायते पुस्तकम् स्थानम संयम साधनादिकमपि प्रत्या सदाचारिणा सत्यागो उपसादि निर्ममतया नो किंचनास्तेयते आकिंचन्यम इदं च संसतिहो धर्मः सताम सम्मतः। इसका अर्थ कहते हैं, सम्यक प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना। देखो कैसी त्याग की परिभाषा कही पद्मनंदी आचार्य महाराज ने, सम्यक प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना। सम्यक प्रकार से माने अपने आत्मा के अभिमुख हो करके, उसी का नाम सम्यक प्रकार है। सम्यक शब्द संस्कृत भाषा में दिशा सूचक है। हमको हमारे सन्मुख होना, वही सम्यकता है। तो आत्म सन्मुख होकर के श्रुत का व्याख्यान करना, दूसरों को सन्मुख होकर के क्या हुआ इसमें से, दूसरे को सन्मुख होकर के श्रुत का व्याख्यान नहीं करना। क्या अपनी आत्मा को सन्मुख होकर के श्रुत का व्याख्यान करना। देखो जैन दर्शन में व्याख्यान करने की पद्धति ही कोई अलौकिक है। क्यों? क्योंकि लौकिक पद्धति में तो सुनने वालों को प्रति सन्मुख होकर के उपदेश दिया जाता है, व्याख्यान किया जाता है, जबकि जैन दर्शन में व्याख्यान करने वाले अपने सन्मुख रह करके व्याख्यान करते हैं। श्यामलाल जी देखो, ये त्याग की व्याख्या चल रही है, क्या पीछे चल रहे हैं, त्याग का, और इसमें व्याख्यान करने की बात आचार्य महाराज ने उठाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्याख्याता है, माने व्यक्ता वक्ता है, जो बोलता है सभा के सन्मुख, उनको मुख्य रूप से अपने सन्मुख रहना है। क्या यही पद्धति सही पद्धति है? परलक्षी उपदेश, दूसरों को उपदेश देना, ये मुख्य प्रवृत्ति व्याख्यानकारों की नहीं होनी चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। मैं मेरा स्वाध्याय कर रहा हूं। क्या एकांत में अगर बैठता तो मैं मन में स्वाध्याय करता, अगर सभा के बीच में बिठाया गया तो जोर से करता हूं, लेकिन करता हूं मैं अपने लिए अपना स्वाध्याय करता हूं, आपके लिए ये स्वाध्याय मैं नहीं करता। ये इस सम्यक पद्धति है, सम्यक प्रकार से व्याख्यान करना, क्योंकि दूसरे किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य में रख करके व्याख्यान करना वो व्याख्यान नहीं है, लेकिन मन में किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को रख करके वो बोलना, वो तो टिप्पणी है, व्याख्यान नहीं है, वो टिप्पणी है। वो व्याख्यान की सही पद्धति नहीं है। इसलिए ये जिनागम में ऐसे सिद्धांत है कि जिससे स्वाध्याय करने से, आत्मोन्मुखी स्वाध्याय करने से अपना हित होता है, अपना कल्याण होता है। और अगर ये पद्धति नहीं रही तो दूसरों को उपदेश देने की मुख्यता में दूसरे को खिलाने को जाएगा, खुद रह जाएगा भूखा। व्यवहार में तो ये हो सकता है कि हम दूसरे को, हम नहीं खाएं, दूसरे को खिलाएं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो जो अपने आनंद का भोजन करता है, क्या इसमें कौन सा भोजन है? नित्य आनंद भोजी होते हैं साधक जीव, धर्मात्मा होते हैं वो, तो नित्यानंद भोजी निर्जराधिकार में अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा है समय सार में, नित्य आनंद अमृत भोजी। क्या लिखा? नित्य आनंद अमृत के भोजन करने वाले हैं जो स्वयं भोजन करते हैं आनंद अमृत का, उन्हीं की वाणी में आनंद की झलक, अमृत की झलक आती है, उनकी वाणी अमृत जैसी बोली जाती है, उसको वचनामृत हम कहते हैं। लेकिन जो जिसको आनंद ही नहीं उत्पन्न होता, और कहेंगे कि हम दूसरों को जिमाते हैं भले ही हम भूखे रह जाएं, तो ये बात यहाँ पर संभव नहीं है। यही यहाँ पर पद्मनंदी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना और मुनि इत्यादि, जो मुनि है, जो त्यागी है, जो विद्वान है, पंडित लोग हैं, उनको पुस्तक देना, शास्त्र का दान देना, उसको स्थान देना, उनके जो बाह्य धर्म के उपकरण हैं, पीछी कमंडल आदि, संयम के जो साधन है उसको देना, वही धर्मात्माओं का उत्तम त्याग धर्म है। किसका? धर्मात्माओं का। क्योंकि यहाँ त्याग का सिर्फ अधिकार नहीं चल रहा है, सिर्फ ज्ञान देने का प्रकरण नहीं चल रहा है, किंतु सम्यक दर्शन पूर्वक देना, इसको उत्तम त्याग कहते हैं, ये उत्तम त्याग का अधिकार चल रहा है। तो धर्मात्माओं को होता है और उसको उत्तम त्याग धर्म कहने में आता है। क्यों उसको उत्तम कहा? कि जिस चीज का वो दान देते हैं उस पर उनको ममत्व नहीं है और दान देते हैं। मिथ्या दृष्टि कैसे दान देगा कि ये मेरी संपत्ति थी, मुझे दान, मैंने दान में दे दी। क्या बोले? कि मेरे पैसे था, मैंने दान में दिए, कि मेरा मकान था, मैंने दान में दे दिया। तो दान में तो दिया लेकिन मेरे पना का अधिकार रख लिया, मेरा दिया। ये बात त्याग को उत्तम त्याग रूप नहीं होने देती। त्याग तो किया अवश्य, त्याग नहीं किया सो बात नहीं, लेकिन उनको उत्तम त्याग नहीं कहते हैं हमारे आगम में। तो ऐसे त्याग अनियमित भी करते हैं। जैनियों की कोई विशेषता है कि किस प्रकार की विशेषता है कि जिस चीज का दान दिया जाता है उस पर वो अधिकार पहले से उठा लेते हैं कि चीज ही मेरी नहीं है। जब ये धन मेरा नहीं है तो फिर इस धन का प्रयोग कोई जिन मार्ग में या सन्मार्ग के उद्योत में लगता है, होता है, तो बड़ी खुशी की, प्रसन्नता की बात है, चीज तो मेरी है ही नहीं। ऐसे वो दान देते हैं, इसलिए उनको उत्तम त्याग कहने में आता है। क्या कहते हैं आगे गुरुदेव? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो अकेला शुद्ध आत्मा हूं और मेरा कुछ भी नहीं है। आत्मा मेरे स्वरूप के अलावा इस विश्व में कोई चीज मेरी नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं, कुटुंब परिवार भी मेरा नहीं, धन आदि कुछ मेरा नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूं। ऐसे सम्यक ज्ञान पूर्वक अत्यंत निकट शरीर में भी ममत्व का त्याग करके शुद्ध स्वरूप में रमणता प्रकट करने पर मुनियों के सर्व प्रभावों का त्याग हो जाता है। ये तो मुनियों का मुख्य अधिकार है ना, त्याग का अधिकार किसका है? भावलिंगी मुनियों का है। आत्मा के भान पूर्वक, शुद्ध आत्मा के भान पूर्वक शरीर आदि समस्त पदार्थों के ममत्व का त्याग किया, उसमें उत्तम आकिंचन्य धर्म भी आ जाता है। इस त्याग में आकिंचन धर्म भी आ जाता है। क्यों? कि आकिंचन में किसी की अपेक्षा कांक्षा नहीं होना। तो जब पर पदार्थ से अपना भिन्नपना जिसने जाना, उनको आकांक्षा नहीं रही, तो आकिंचन भी इसमें आ जाता है। आचार्य देव ने एक ही श्लोक में दोनों धर्मों का वर्णन किया है। आत्म प्रतीति पूर्वक मुनि दशा में जो प्रवर्तमान हो किंतु अभी पूर्ण स्थिरता न होती हो, पूर्ण स्थिरता अंतर्मूर्त भी मुनिराज को हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, लेकिन जब तक वो नहीं होती है, विकल्प उठते हैं, उस समय मुनिगण भी श्रुत की शास्त्र की सम्यक प्रकार से व्याख्या करते हैं। जब इनको विकल्प उठता है तो आत्म स्वरूप का बोध देते हैं। आत्मा कैसा है, आत्म स्वरूप कैसा है, पर इस स्वरूप का अनुभव की प्राप्ति कैसे होती है, ऐसा बोध आत्म सन्मुख रह करके, क्या स्वरूप सन्मुखता को छोड़ करके नहीं, जो मुनिराज को होता है विकल्प के काल में, उसे भी यहाँ त्याग धर्म कहा है। मुनिराज के सम्यक प्रकार के श्रुत के व्याख्यान को भी त्याग कहा है। देखो, त्याग की परिभाषा कहीं सुनी थी ऐसी? हम तो ये समझते मोटे रूप से कि हमारे जो पैसे हैं वो उसका चंदा हम लिखावे, या हम कुछ किसी को दे देवे तो त्याग किया। लेकिन यहाँ पर बात ये कोई दूसरी है। वास्तव में शास्त्र वाचने की क्रिया को या राग को धर्म नहीं कहा। क्या? विकल्प है सो धर्म नहीं है। उस समय अंतरंग में, उस समय भी अंतरंग में वीतराग स्वभाव की जो परिणति चलती है, राग का अंश उठता है छठे गुण स्थान में उपदेश का, और उसी समय भी वीतराग भाव की परिणति मुनिराज को चलती है। उस पर उसमें राग का त्याग होता है, तो आत्म परिणति में राग का अभाव होता है, उसको त्याग कहते हैं, वही उत्तम त्याग है। श्रुत की व्याख्या करते समय वाणिया विकल्प हो, वह कहीं धर्म नहीं है, ये वाणी भी धर्म नहीं, और विकल्प जो राग कहीं अंश रूप है वो भी धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म वितराग पर्याय होती है। श्रुत का रहस्य तो आत्म स्वभाव है। श्रुत जो जिसको द्रव श्रुत कहते हैं, तो द्रव श्रुत का रहस्यभूत कोई विषय होता है तो वो आत्मा का स्वरूप है, तो आत्म स्वभाव है, और वीतराग भाव ही सर्वश्रुत का प्रयोजन है। कोई भी शास्त्र हो, शास्त्र का तात्पर्य और शास्त्र की प्रत्येक गाथा का तात्पर्य वीतराग भाव है। क्या है? वीतराग भाव है। राग करना वो शास्त्र का तात्पर्य नहीं होता। विकल्प होने पर भी उस समय वीतरागी ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सम्यक श्रुत की वृद्धि होती है। विकल्प शास्त्र के उपदेश का चलते हैं उसी वक्त भी मुनिराज को श्री गुरु को भीतर में अपना स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान में आश्रय लिया हुआ है और अपने वितराग भाव की वृद्धि होने की निर्जरा चालू ही चालू है। शुद्ध की वृद्धि प्रति समय होती है, जैसे कि कोई एक गुण स्थान में देखते हैं कि मुनिराज तो अभी केवल ज्ञान नहीं पाया मात्र छठे सातवें गुण स्थान में है, लेकिन एक गुण स्थान में रहते हुए भी प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी किसको कहते हैं कि दो मल्टीप्लाई बाय दो चार होता है पहले समय में, और दूसरे समय में चार गुण चार सोलह होता है, उसी को गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। डबल नहीं, स्क्वायर जिसको बोलते हैं अपन, हाँ वर्ग जिसको बोलते हैं, वर्ग वर्गणा बोलते हैं ना, तो ऐसी निर्जरा मुनिराज को प्रति समय होती है। वही का वही गुण स्थान में निर्जरा और शुद्धि विशेष चालू ही चालू रहते हैं। बाह्य दृष्टि से स्थूल स्थूल दृष्टि से ऐसा देखने में आवे तो वही गुण स्थान में है, ऊपर के गुण स्थान में नहीं गए, श्रेणी नहीं लगाई, लेकिन उसी गुण स्थान में भी असंख्य भेद है। कितने असंख्य भेद है, एक गुण स्थान में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट देखे तो तीन भेद है स्थूल, और सूक्ष्मता से देखे तो असंख्य भेद है। ऐसे मुनियों को उपदेश देने के काल में जो राग का विकल्प अंश है उसी काल में भी उनको वितरागता की वृद्धि होती जाती है। ये बात आती है कहीं समयसार, समयसार में अमृतचंद्र आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं इस समयसार परमागम की टीका करता हूं, इस टीका को करते करते मेरी आत्मविशुद्धि हो। आता है कि नहीं आता है? गुरुदेव तो प्रश्न उठाते थे कि महाराज आप टीका करेंगे तब तो आपको विकल्प होगा, टीका करने का विकल्प चलेगा, और विकल्प करते करते शुद्धि कैसे बढ़ेगी, ये तो राग है, राग से कोई वितरागता होती है क्या? तो कहते हैं कि राग से तो वितरागता नहीं होती है, किंतु इस वक्त भी भीतर में श्रद्धा ज्ञान चारित्र की जो परिणति चलती है वो धर्म परिणति जैसे जैसे चालू रहती है वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती जाती है, निर्मलता बढ़ती है, शुद्धि बढ़ती है, और राग है सो टलता जाता है, राग का अभाव होता जाता है। ऐसे सम्यक श्रुत की वृद्धि होती है, ज्ञान की भी निर्मलता बढ़ती है, उनके श्रुत ज्ञान में भी निर्मलता बढ़ती है, और राग की मलिनता अभाव होने जा रही है। यही धर्म है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा व्याख्यान करते हुए, अर्थात आत्म स्वभाव में विपरीतता न हो, इस प्रकार के सम्यक ज्ञान का परिणमन करने पर मुनियों को उत्तम त्याग धर्म होता है। देखो कैसे घटाया, स्थूल दृष्टि से ऐसा लगे कि ये श्रुत का व्याख्यान करें, शास्त्रुत मैंने शास्त्र का व्याख्यान करें, उसमें त्याग कहां से आया, कौन सा त्याग आ गया उसमें, क्या क्या चीज दे दी उन्होंने, कोई चीज हम देते हैं तो त्याग किया ऐसे मानते हैं, पर मुनिराज के पास तो कोई चीज है नहीं, कपड़े उतार कर बैठ गए, वो तो तिल तुषम मात्र परिग्रह तो है ही नहीं, फिर त्याग क्या करना उनको, ये बात तो मुनिराज की चल रही है। और ये तो पूर्ण त्याग करके तो बैठ गए हैं, फिर उसको त्याग धर्म कैसा? तो कहते हैं कि सम्यक श्रुत का व्याख्यान वो करते हैं, उस वक्त भी उनको राग का त्याग होता जाता है, निर्मलता बढ़ जाती है, वही त्याग है। राग के त्याग को ही यहाँ पर त्याग कहते हैं, पर पदार्थ के त्याग को त्याग नहीं कहा, क्योंकि मुनियों की बात चल रही है। राग का अभाव होने पर मलिनता का अभाव होता है, अशुद्धि का अभाव होता है, और शुद्धि और निर्मलता की प्राप्ति होती है, और जो हुई है उसमें वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि होती है उसको निर्जरा कहते हैं, शुद्धि विशेष को निर्जरा कही है, और इसमें जो अशुद्धि का त्याग हुआ उनको त्याग कहने में आया है, ऐसा त्याग की परिभाषा चल रही है। ये जगत से कोई दूसरे ढंग की बात है, जगत में तो कोई दान दे दे तो त्याग कर दिया ऐसा बोलते हैं, या राग का अभाव करते हैं उसको त्याग कहते हैं। ये तो बात हुई मुनियों की, अब कहते हैं कि गृहस्थों के भी आत्म स्वभाव के लक्ष्य से श्रुत का मनन स्वाध्याय करने से श्रुत ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। गृहस्थों को भी स्वरूप सन्मुख हो करके जो भी शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मनन स्वाध्याय चलता है उसमें उनकी श्रुत ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। जितनी निर्मलता बढ़ती है ज्ञानी को, गृहस्थ ज्ञानी को, उतनी उनकी शुद्धि बढ़ी और अशुद्धि का त्याग हो गया, और राग नष्ट होता जाता है, और आगे जाकर के वो मुनि हो जाएगा। गृहस्थ है, राग का कमी हो जाने से, अभाव हो जाने से ऊपर के गुण स्थान में जाएंगे तो उनको निदशा की प्राप्ति होगी। इससे उनके भी उतने अंश में त्याग धर्म है जितनी निर्मलता होती है, और जितनी अशुद्धि का अभाव होता है उतने अंश में उनको भी त्याग धर्म है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात, पहले नहीं, क्या सम्यक दर्शन होने के पश्चात ही साधक जीव के निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, ऐसे दो प्रकार के धर्म है, उनका राग का अभाव हो जाने से जो भी पूर्व प्रारब्ध के कारण से जो भी लक्ष्मी धन आदि का संयोग मिला है उनको वो सन्मार्ग में लगा देते हैं। धनीपना रख के नहीं, धनीपना छोड़ करके, मेरी चीज नहीं है, जो भी संयोग पूर्व प्रारब्ध से हुआ है तो ये सन्मार्ग में लग जाए, मुझे प्रमोद होगा, मुझे खुशी होगी कि अपने पाए पाए भी सन्मार्ग में लगती है। तो ऐसे उनको जो बाह्य त्याग हुआ उसको व्यवहार त्याग कहने में आया है, और अंतर में जो राग का अभाव हुआ उसको निश्चय त्याग रूप, उत्तम त्याग रूप धर्म कहने में आया है। ऐसे दोनों प्रकार के धर्म मोक्ष मार्ग में जिसका स्थान प्राप्त हुआ हो, चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, उसको ही दोनों धर्म होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। जितना वितराग भाव हुआ है उतना वास्तव में धर्म है, जितनी वितरागता प्राप्त हुई, जितनी निर्मलता प्राप्त हुई उतना ही वास्तव में धर्म है, और जो शुभराग रहा वह वास्तविक धर्म तो नहीं है, क्योंकि इनसे तो पुण्य बंद होता है, वो बंद का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। पुण्य बंद का भी कारण होवे और पुण्य मोक्ष का भी कारण हो, ये बात कैसे बन सकती है? जो बंध का कारण होता है वो कतई मोक्ष का कारण हो सकता नहीं है, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध है। बंध मोक्ष दोनों परस्पर विरुद्ध है, इसलिए इससे धर्म नहीं होता। और किंतु धर्मात्मा जीव के उस राग का निषेध विद्यमान है। क्या? अगर राग का निषेध नहीं आए तो उनको अनुमोदन हो जाएगा तो धर्म दशा रहेगी नहीं। राग है तो दोष है, और दोष का अनुमोदन करना ये मिथ्या दृष्टियों को होता है, सम्यक दृष्टियों को नहीं होता। वो अपने राग का दोष का निषेध हमेशा करता है। इससे उपचार से उसके धर्म कहा जाता है, उसके राग पर्याय है, वो आत्मा की पर्याय नहीं है। जगत में तो ऐसा चलता है कि जिनको अच्छा व्याख्यान करने को आता है वो ऐसा समझता है कि मुझे बहुत अच्छा बोलने को आता है। वो क्या समझता है कि मैं बोल सकता हूँ, इतना ही नहीं मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। क्या सही है ये बात? ये बात बिल्कुल गलत है। मैं अच्छा बोल सकता हूँ वो भी गलत है, और मैं अच्छा गा सकता हूँ वो भी उतना ही गलत है। पंडित है वो बोलेगा और भक्ति करने वाला गाएगा। तो वाणी पर जो आत्मा का अधिकार रखते हैं, वो शब्द को, जड़ को और आत्मा को एक मानते हुए मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं, उसको त्याग धर्म हो सकता नहीं है। श्रुत की व्याख्या के शब्द पुद्गल के होने से आत्मा के नहीं है। आत्मा शब्दों को कर सकता नहीं है। आत्मा शब्द को बना सकता है? ये तो टेप भी बोलती है कि नहीं बोलती? हाँ, अगर जो वो आत्मा का कार्य होता तो ये जड़ टेप बोलती बोल सकती नहीं। लेकिन वहां आत्मा नहीं होने पर भी आवाज तो निकलती है। ये आवाज है, ये शब्द पर पुद्गल परमाणु के स्कंद की पर्याय है। स्कंद मैंने बहुत परमाणु साथ में होता है तो आवाज होता है। ये परमाणु के विभाव पर्याय है। क्या एक परमाणु के पर्याय में आवाज निकलती नहीं है? न निकल सकती है, क्योंकि शुद्ध परमाणु है। और आवाज है, शब्द है, ये अनेक परमाणुओं के आपस में टकराने से कोई निकलती है तो आवाज निकलती है। ये परमाणु की पर्याय है, स्कंद की, अनेक परमाणु की पर्याय है, आत्मा की पर्याय नहीं है। वो किसी को वाणी बंद हो जाती है ना, और कोई गूंगे भी होते हैं, बोल नहीं सकते, या कोई किसी को बीमारी के वश या बेशुद्धि के वश बोलने का नहीं होता। अगर आत्मा का अधिकार होता तो ऐसा हो सकता नहीं। आत्मा शब्दों को कर नहीं सकता, और जो शुभराग होता है वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम ये कहेंगे कि जब आत्मा बोल सकता नहीं है तो इच्छा के अनुकूल बातचीत तो हो रही है हमारी, फिर आत्मा कैसे बोल नहीं सकता? ये प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा के बोलने की इच्छा ये जीव की राग की पर्याय है, विभाव पर्याय है, और पुद्गल परमाणुओं के जो भाषा है, शब्द वर्गणा है, कि पुद्गल की पर्याय है, दोनों बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में पाया जाता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य के बीच में पाया जाता है। ये दोनों बात अलग है, इसका विज्ञान भी अलग है। जो साइंस पढ़े होंगे उसको पता होगा कैटलिक एजेंट क्या होता है। केमिस्ट्री जिसमें पढ़ा हो, रसायन शास्त्र जिसको कहते हैं, उसमें कैटलिक एजेंट मैंने एक पदार्थ जो होता है, दो पदार्थ की प्रक्रिया के बीच में इसकी उपस्थिति होने पर प्रक्रिया बनती है, अगर इसकी उपस्थिति नहीं हो तो वो प्रक्रिया नहीं बनती है, तो उसको यहाँ निमित्त कहने में आता है। कहते हैं कि सुराग होता है, यह भी आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, ये विभाविक पर्याय है आत्मा के, ये आत्मा का मूल स्वरूप शुद्ध स्वरूप नहीं है। तो हमें तो शुद्ध स्वरूप को देखना है, क्या विभाव है वो तो मिटाना है, क्योंकि विभाव है वो रोग है आत्मा की अवस्था में। आत्मा की अवस्था का रोग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोग दुखदायक होता है, सुखदायक नहीं होता। ऐसी प्रतीति पूर्वक शुद्ध स्वभाव के अनुभव में लीन पूर्ण लीन न रह सके, तब धर्मात्मा को धर्मात्मा जीवों के भी श्रुत के आगम के व्याख्यान आदि का शुभराग होता है। धर्मात्माओं को भी उपदेश देने का राग मुनियों को भी आता है, उस समय अशुभ राग नहीं होता। क्या जब शुभ राग होता है तो अशुभ राग नहीं होता धर्मात्माओं को। साधारण वक्ता हो, मिथ्या दृष्टि हो, उनको तो अशुभ राग ऐसे हो जाता है कि मैं अच्छे से अच्छा व्याख्यान कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तो उनको वक्तृत्व की जो कला है उसका अभिमान आए बिना नहीं रहता। ये त्याग का व्याख्यान चल रहा है ना, एक बहुत सुंदर दृष्टांत रूप प्रसंग है। हमारे सिटी में एक बहुत सज्जन आदमी था, वो क्या करता था कि अपने जो साधर्मी जैनी जो लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, कोई विधवा बाई हो, कोई अपंग हो, कोई बीमार हो, किसी को धंधा नौकरी नहीं हो और बहुत तकलीफ पाते हो, फिर भी ऐसे हो कि जो मांग सकते नहीं हो, ऐसे भी होते हैं कि लोग मांगते नहीं, तकलीफ को सहन करते हैं लेकिन मांगते नहीं है किसी से, तो उनको ढूंढ करके वो उनके घर पे जा करके वो पैसे चीज वस्तु आदि दे करके मदद करते हैं। इस प्रकार के दान की प्रवृत्ति वो करते रहते थे। जब इनके मित्र सगे संबंधी को मालूम हुआ कि बहुत सज्जन है और अपनी जेब से वो हमेशा नियमित ये प्रवृत्ति करते हैं, तो लोग उनको पैसा भेजने लगे। क्या आदमी एक संस्था बन गई, आदमी एक था लेकिन वो संस्था खुद बन गई। बहुत लोग उनको हर महीने रेगुलरली पैसे देने लगे, नियम रूप से 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया। क्या आप जिसको भी देना चाहो आप दे दो, हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमारा पैसा किसको पहुंचा, और लेने वाले को भी बताना नहीं कि तुमने पैसा किसको दिया, गुप्त दान जिसको कहते हैं। बहुत सज्जनता से उन्होंने कई साल तक ये प्रवृत्ति की। श्वेतांबर जैन थे वो, तो इनके घर पे जाना हुआ तो उन्होंने ये बोला, तो भाई साहब ये प्रवृत्ति कर रहे हैं उसमें कोई अनुचित बात हो, कोई हमारी गलती हो तो हमें समझना है, क्या हम कुछ सही कर रहे हैं, इस पर हम आपका अभिप्राय चाहेंगे। क्या बोले, इस प्रवृत्ति पर आपका क्या अभिप्राय पड़ता है, ऐसा करके प्रश्न निकाला। प्रश्न तो कोई भी आ सकता है।
तो हमने कहा कि लौकिक रूप से तो और दूसरे लोग जो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा अच्छा काम आप करते हो उसमें कोई शक नहीं है, बेशक आपकी प्रवृत्ति ठीक है। किंतु अब मेरा प्रश्न है आपके प्रश्न के सामने कि ऐसा अच्छा कार्य मैं करता हूं, इस प्रकार का अहम भाव का अभाव करने के लिए आपने कुछ सोचा है क्या?
तो चौंके,
अरे इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। मैंने कहा ऐसा अहम भाव ये बिना रहने वाला नहीं है। जब तक सही ज्ञान नहीं होता और अहमपना अहंकार अभिमान को कैसे मिटाना इसकी कला, जो ज्ञान कला जिसको कहते हैं, इस कला जहां तक हाथ में नहीं आती तो अच्छे काम करने वाले को ये अच्छे काम करने का भी अहम भाव ये बिना नहीं रहेगा। जैसा कि हमने कहा कि त्याग करने वाले दान देने वाले क्या सोचते हैं कि मैंने दान दिया। देखिए हमारे मंदिरों में ये तख्ती लगती है कि नहीं लगती है? हाँ, हमारे यहाँ मंदिरों में तख्ती हम लगाने नहीं देते हैं। मंदिर तो हमने भी बनाया है भावनगर में, सुंदर मंदिर है, लेकिन आप देखेंगे वहां एक भी तख्ती नहीं है। पूजा की तिथियां का भी बोर्ड हमने बनाया था और निकलवाया, यानी हमें ये नाम है देह का, आत्मा का तो नाम है ही नहीं। और हमारा काम तो यहाँ आत्मज्ञान करने का है, हमने देहात्म बुद्धि को दृढ़ करना ही नहीं है। और नाम तो देह का, देहधारी का है, इस नाम से हमें कोई वास्ता नहीं है। हम अकेले शशि भाई नहीं है, दुनिया में बहुत से शशि भाई है, किन किन को आप पहचानेंगे शशि भाई से? हाँ, एक नामधारी तो बहुत होते हैं क्या? एक आदमी होते हैं क्या? बहुत होते हैं। हमारे यहाँ तख्ती का रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ एक व्याख्यान हॉल बनाने का दो तीन साल पहले बात चली, फिर आदमी ने बोला कि मेरा नाम अगर ये व्याख्यान हॉल पर रहता है तो इतनी बड़ी रकम मैं दान में दे सकता हूँ। तो हमने ये कहा कि आपसे भी बड़ी रकम देने वाले तो है, अगर हम नाम रखने का कंडीशन का स्वीकार करें तो। लेकिन हमारा सिद्धांत ये बोलता है कि भगवान का मंदिर हो या शास्त्र का मंदिर हो, शास्त्र स्वाध्याय क्या चीज है? स्वाध्याय हॉल है वो शास्त्र मंदिर है, और प्रतिमा भी विराजमान करते हो देव मंदिर है, देव गुरु शास्त्र किसी का भी मंदिर हो वहां देव गुरु शास्त्र का नाम रहेगा, हमारा तुम्हारा किसी का नाम। ये बात है। तो पैसे देने वाले तो हमें बहुत है, लेकिन हम ऐसे पैसे लेने वाले नहीं है, कंडीशन से पैसे नहीं लेते। हमारे वहां ट्रस्ट चलते हैं, बहुत से ट्रस्ट चलते हैं, कंडीशन से पैसा नहीं लिया जाता। अनकंडीशन जिसको जो देना हो दे, नहीं देना हो वो नहीं दे, किसी से आग्रह भी हम करते नहीं। ऐसे हमारे यहाँ ध्यान दान की पद्धति ऐसी चली है, आज भी ये पद्धति चली है। हमारे यहाँ बोलियां नहीं, हमारे भावनगर के मंदिर में बोलियां भी नहीं होती, किसी चीज की बोलियां नहीं, अभिषेक की, आरती की, आरती के घी की, पूजा की कोई बोलियां नहीं है। जिसको लिखाना है वो लिखा दे, नहीं लिखाना हो हमें कोई अपेक्षा रखनी नहीं है। तो शुरू शुरू में तो जब हमने ये नियम बनाया तो हमारे जो कार्यकर्ता लोग थे, ट्रस्टी लोग, साथीदार लोग हैं तो होते हैं, तो बोले कि भाई साहब ऐसा करेंगे तो फिर आमदनी तो मंदिर में होगी नहीं और मंदिर में खर्च तो होता है। तो मैंने कहा कोशिश तो करें। तो क्या हुआ कि आमदनी जो एक रुपया होती थी वो सवा रुपया, डेढ़ रुपया हो गई। बोले कि ये तो बड़ी चमत्कार की बात है, बोली नहीं बोली जाती, पैसा मांगा नहीं जाता, रुपया की जगह 1.5 रुपया आ जाता है, क्या बात है, पैसों की तो कोई कमी नहीं रहती। अगर हमारी सुंदर पद्धति है, निर्दोष पद्धति है, कार्य की प्रणाली का में भी हम दोष को नहीं रखते, निकाल देते हैं, तो देने वाले को तो बहुमान आएगा कि यहाँ तो पद्धति अच्छी है, बड़ी सुंदर पद्धति है, देने वाले और उत्साह से देंगे। तो ऐसे हैं कि जब हम कोई भी काम करना है, हमको ताज्जुब लगता है, ये मंदिरों में तख्तियां लगती है, क्या बात है, छोटी मोटी एक चौकी भी लगती है तो चौकी पर नाम लगता है, फलाने भाई ने चौकी दिया, फलाने भाई ने चौकी दिया, ये क्या बात है, पंखे पर नाम लगे, सीढ़ियों पर नाम लगे, दीवारों पर नाम लगे, नाम ही नाम लगे, इतने लगे कि फिर पढ़ने का किसी को फुर्सती मिले नहीं, लिखने वाले की मेहनत बेकार जाती है फिर, क्योंकि लिखाने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो ये त्याग करने का सही ढंग नहीं है, इसमें धर्म दृष्टि से विचार करें तो नाम लिखाने वाले को अभिमान का पाप बंद होता है, पुण्य बंद भी होता नहीं। देखिए क्या नुकसान हुआ, दान तो दिया पुण्य करने के लिए और बंद गया, पाप का बंधन हो गया। तो ये शास्त्र स्वाध्याय हमारे यहाँ चले तो सब ये जानकारी मिले कि हम दान देकर पुण्य बांधते हैं या पाप बांधते हैं, क्या करते हैं, बिना शास्त्र स्वाध्याय ये जानकारी भी मिलेगी नहीं, इस प्रकार की समझ भी आएगी नहीं। और हम जाना चाहेंगे पूर्व में, चले जाएंगे पश्चिम में, ये हालत हो जाएगी। ये तो कार्य बहुत समझदारी का है, हम धंधे में, व्यापार में, कारखाने में जितनी बुद्धि लगाते हैं, इससे कुछ अधिक मात्रा में बुद्धि लगाने का ये विषय है, इससे कम मात्रा में नहीं। सोच के, समझ करके, सही समझ करके जो करना है सो करना है, ऐसे करने को जाएंगे तो लाभ तो नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि ग्रहस्थों को भी सूत के व्याख्यान आदि का शुभ राग होता है, उस समय अशुभ राग नहीं होता। देखिए यहां से बात निकली कि त्याग होवे तो शुभ राग से होवे, साथ में अहम भाव का, अभिमान का अशुभ राग नहीं होना चाहिए। इस अपेक्षा से वो व्यवहार से त्याग है, और ज्ञान का, ज्ञान में जितना अनुभव होता है उतना परमार्थ त्याग है। देखो यहाँ पर बात लिया है गुरुदेव ने कि ज्ञान का, ज्ञान में जो अनुभव होता है उतना परमार्थ त्याग है, परमार्थ से तो जो सत ज्ञान है वह आत्मा ही है, परमार्थ से जो सत ज्ञान है ये तो भाव सत ज्ञान तो आत्मा ही है, इससे आत्म स्वभाव का अनुभव रहे, वही निश्चय से सत की व्याख्या है। और बाहर में जो ये अनुभव पूर्वक वाणी चले उसको व्यवहार से श्रुत की व्याख्या कहने में आती है, और यही उत्तम प्रकार का, सम्यक प्रकार का, उसी को त्याग धर्म कहने में आया है। देखिए कैसे लोकोत्तर त्याग की, त्याग का स्वरूप कैसा लोकोत्तर है हमारे धर्म में। त्याग के 9 प्रकार या 49 प्रकार तो व्यवहार से हैं, ये सब अनेक प्रकार के राग की बात है। शुभ राग के समय किस किस प्रकार के निमित्त होते हैं और किस किस प्रकार के राग का अभाव करके ज्ञान स्वभाव में लीनता किया, कैसे किसी प्रकार के निमित्तों पर से लक्ष्य छूट गया,
यह बतलाने के लिए बाह्य प्रकारों भेदों का वर्णन व्यवहार से त्याग का आता है। जो जीव मूलभूत वस्तु स्वरूप को नहीं समझते वे भंग भेद के कथन में ही भटक जाते हैं और उनको ही सच्चा त्याग मान लेते हैं, तो सच्चे उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप नहीं है। जैसे त्याग धर्म के विषय में व्याख्यान के कुछ अंश को मैंने पढ़ा है, अपना समय यहाँ पर पूर्ण होता है, आज का व्याख्यान समाप्त होता है यहाँ।